हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे लोगों की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से ज्यादा नहीं हो सकती। शैतान कभी भी हार नहीं सकता तुम जैसे इंसानों से। विक्रांत ने गुस्से में दांत पीसते हुए ये बात बोली और फिर से उन लोगों पर हमला करने की कोशिश की। तभी पीछे से आकर भानु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं मालिक, नहीं, ऐसे नहीं। इन लोगों पर वार करने से पहले हमें इन्हें तोड़ना होगा। भानु की बात सुनकर विक्रांत ने पीछे मुड़कर इन सब लोगों की तरफ देखा और जब तक वीरेश पीछे मुड़कर वसुंधरा से बोल, राजकुमारी आप बिल्कुल भी मत डरिए, ये आपको यहाँ से कहीं भी नहीं ले जा पाएगा। और इतना बोलते हुए उसने सबसे पीछे खड़ी लतिका को इशारा किया और उसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने के लिए कहा। लतिका ने आँख बंद करके अपने हाथ को दरवाजे की तरफ आगे बढ़ाया और बिना दरवाजे को छुए वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो दरवाज़ा काली शक्तियों के जोर से विक्रांत ने ही बंद किया था और इसीलिए वो उसे खोल नहीं पा रही थी। वीरेश की बात सुनकर वसुंधरा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहीं म कहीं उसे वीरेश पर भरोसा था, क्योंकि वीरेश इससे पहले भी उसकी जान बचा चुका है और अभी उन लोगों की शक्तियों और अपनी आंखों के सामने हो रही लड़ाई देखकर भी कहीं ना कहीं उसे पता चल रहा है कि वो लोग विक्रांत को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक वीरेश अकेला था, लेकिन अब उसकी मदद के लिए 5-6 लोग और आ चुके हैं और कुल मिलाकर वहां पर 7 लोग हैं। वसुंधरा उन 7 लोगों के पीछे खड़ी है और उनके सामने खड़े हैं विक्रांत और भानु, जो कि आपस में फुसफुसाते हुए कुछ बात कर रहे हैं और उनकी बात किसी को भी सुनाई नहीं दे रही। भानु के पास भी शैतान की दी हुई शक्तियां हैं और तभी विक्रांत से बात करते हुए भानु ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो आगे आया। लतिका, जो कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश में पीछे मुड़कर खड़ी हुई थी, उसके हाथ की पकड़ नीरज के हाथ पर एकदम ढीली हो गई थी और ये देखते हुए भानु ने तुरंत ही उसके हाथ पर वार किया और एक झटके से ही उन दोनों का हाथ छूट गया। लतिका दरवाजे के पास जाकर गिरी और नीरज का सिर भी जमीन से टकरा गया। अपने दो साथियों को इस तरह से जमीन पर गिरते हुए देखकर सभी का ध्यान उन दोनों की तरफ हो गया और सभी ने उनका नाम लेकर चिल्लाया, नीरज, लतिका, क्या हुआ तुम दोनों को? और तभी भानु ने भी विक्रांत को इशारा किया और सब लोगों का ध्यान बटा हुआ था और ठीक उसी वक्त विक्रांत ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन लोगों पर हमला किया। और इस बार विक्रांत के हमले के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, इसलिए वो संभल नहीं पाए और जैसे ही विक्रांत के हाथों से निकलती हुई वो काली रोशनी उन सब पर आकर लगी, वीरेश समेत वो सब एकदम ही जमीन पर गिरे और एक दूसरे से काफी दूर हो गए। अब वसुंधरा के सामने कोई भी नहीं था। वसुंधरा के ऊपर बना वो रक्षा कवच भी गायब हो गया। उसकी तरफ बढ़ते हुए विक्रांत जोर से हंसते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। वो लोग संभल पाते उससे पहले ही भानु और विक्रांत ने उन सब लोगों को अपनी ही जगह पर जमा दिया, जिससे कि वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं पाए। यहां तक कि वीरेश भी एकदम अपनी जगह पर जम गया और कमरे के अंदर भी ये सारी आवाज जा रही है। चंद्रिका और रानी एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन चंद्रिका रानी से ज्यादा परेशान है। वो लगातार दरवाज़ा खटखटा रही है और वसुंधरा का नाम लेकर चिल्ला रही है, राजकुमारी, राजकुमारी वसुंधरा, आप ठीक तो है ना? दरवाज़ा खोलिए, ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? अंदर आइए, आपको बाहर नहीं होना चाहिए था। चंद्रिका की आवाज़ वसुंधरा को भी सुनाई दे रही है और वो पीछे हटते हुए एकदम दरवाजे की तरफ ही गई और पीछे दरवाजे पर हाथ रखते हुए वो दरवाजे से अपनी पीठ लगाकर एकदम दरवाजे से चिपकी हुई खड़ी है। विक्रांत उसकी तरफ को बढ़ा और आगे आते हुए विक्रांत ने एकदम ही उसका हाथ पकड़ लिया और विक्रांत ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वसुंधरा को अपने हाथ पर हल्की जलन महसूस हुई और उसने तुरंत ही नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। चलिए राजकुमारी, आपको आपकी सही जगह पर लेकर चलता हूँ। इतना बोलते हुए विक्रांत के चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट तैर गई। उसे इस तरह से मुस्कुराते देखकर वसुंधरा एकदम ही घबरा गई और उसने तेज आवाज में चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहीं लेकर नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ इस तरह वहां पर वो सब कुछ होता देख भानु मुस्कुरा रहा है और वो वहां से बाहर की तरफ चला गया, क्योंकि वो विक्रांत की तरह हवा में गायब नहीं हो सकता। उसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं हैं और उसकी उम्र भी काफी ज्यादा है, इसलिए समय रहते ही वो वहां से बचकर निकल गया, क्योंकि अभी भी बाकी सारे लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, और उनमें से दो लोगों को काफी गहरी चोट आई थी। उनके सिर और हाथ पैरों से खून भी निकल रहा था, जहां पर खरोचे नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। और वीरेश अपनी आंखों के सामने वसुंधरा का हाथ विक्रांत को पकड़े हुए देखा, और उसने गुस्से में अपने हाथ हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इस तरह से जकड़ा हुआ था जैसे कि उसे कोई भारी जंजीरों से बांध कर रखा गया हो। वो अपने हाथ पैर तो क्या, आंखों की पलकें तक हिला नहीं पा रहा था। सब कुछ अपने सामने होता हुआ देख रहा था, और उसके मुंह से बोली भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसका मुंह भी एकदम बंद जैसे जमा हुआ था। विक्रांत ने वसुंधरा की कोई भी बात नहीं सुनी, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ उसने तसल्ली से अपनी आंख बंद की, और कुछ ही देर में उन दोनों के आसपास वही काला धुआं भर गया और वो पूरी जगह पर फैल गया। लेकिन उस धुएं में वो दोनों एकदम ही गायब हो गए, और अब वीरेश, शिवानी या किसी को भी वसुंधरा और विक्रांत नजर नहीं आ रहे हैं। वो धुआं वहां पर भर रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। तभी उन दोनों को समझ आ गया कि उस धुएं में छिपकर ही विक्रांत वसुंधरा को लेकर वहां से गायब हो गया, क्योंकि जब तक वो धुआं गायब हुआ वहां पर कोई भी नहीं था, और उसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग अपने हाथ पैर हिला पाए। लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि जिसके लिए उन लोगों ने ये सब किया वो हो चुका था। विक्रांत राजकुमारी को वहां से लेकर जा चुका था। उस शैतान का मकसद पूरा हो गया, और बाकी सारे लोग राजकुमारी को बचाने में नाकामयाब हो चुके थे। इसलिए वीरेश अपना सिर पकड़कर घुटने के बल वहीं जमीन पर बैठ गया और नीचे सर झुका लिया, क्योंकि वो खुद से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो विक्रांत को रोक नहीं पाया। इतने लोगों के साथ मिलकर भी वो उसकी शैतानी शक्तियों के सामने बुरी तरह से हार गया और अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। उसने अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ होते देखा, और अब वो सोच रहा है कि वो राजा को क्या जवाब देगा, राजा रानी को, और अपने गुरुजी से नजरें कैसे मिल पाएगा। पांचवा, विक्रांत के दादाजी ठाकुर नरेंद्र प्रताप वहां पर उस गहरे गड्ढे में अभी भी फंसे हुए हैं, जहां पर वो खुद ही उसे श्राप के अंत की तलाश में आए थे, और उन्हें लगा था उन्हें वहां पर ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिससे वो श्राप तोड़ने में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन उल्टा वो खुद ही बुरी तरह से वहां पर फंस गए थे, और उनके खुद की जान पर बनाई, और वहां से निकलने की मदद के लिए उन्होंने महात्मा को ही याद किया।
ठाकुर नरेंद्र प्रताप और महात्मा मणिकनाथ भी अपने समय में इस तरह आश्रम के छात्र रह चुके हैं, और वो दोनों बहुत ही होशियार थे, इसलिए उन दोनों को भी शक्ति बंधन से संदेश भेजना कि कला बहुत अच्छी तरह से आती है, और अपने जीवन के इस कल तक वो दोनों कई बार इन सब का उपयोग भी कर चुके हैं, और एक दूसरे से संपर्क करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए एक गहरी सांस लेते हुए नरेंद्र प्रताप ने चारों तरफ देखा और उन शक्तियों से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक घेरा बनाने की कोशिश की। वहां पर उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई महसूस हो रही थी, और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हांफ रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी अब तक काफी ज्यादा हो चुकी है और सांस तेज चल रही है। इसके अलावा वो किसी नकारात्मक शक्ति या बहुत ही ज्यादा शैतान के अंश द्वारा रचा गया वो सब कुछ है, जिसमें कि उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही। लेकिन फिर भी अपनी सारी शक्तियां और इतने सालों के अनुभव को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आखिर अपने इर्द गिर्द चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जहां पर वो फिलहाल के लिए उन सारे अजीब से दिखने वाले जंगली और जहरीले जानवरों से बचे रह सकते थे। वो सारे जानवर भी शैतान और शैतानी शक्तियों से बने हुए लग रहे थे। कहानी जारी रहेगी।